Bhaiyo Beno, Namo Buddhaya, Jai Bhim. So it's very good to hear from everybody here this morning. I'm very sorry that we couldn't hear every one of you sing a song. It would have been so good to hear more of the different voices that there are here. And I'm sorry that we had to rush you a little bit towards the end. Listening to all the different voices, two things struck me. There are a lot of Maharashtrians here. And that's really wonderful. Because Maharashtrians have kept Babasaheb to themselves and they haven't spread him throughout India. And now they're beginning to do that. They're beginning to come out of Maharashtra. And that's very good indeed. But, well, I think probably 60-70% of people on this retreat are from Maharashtra. So, tumi Marathi eat nahe. Oh, what's the word?
Mala Marathi.
No, they shouldn't speak Marathi.
So tumi Marathi bolta kama nahi.
Remember, other people can't speak Marathi. And if you're speaking in Marathi, people from different states who can't speak Marathi will feel excluded. So please be aware that this is an Indian event. It's an international event. And be aware of those people who don't speak your language. For those who don't come from Maharashtra, I'll teach you the most important words in Marathi. Mala Marathi eat nahe. Mala Marathi eat nahe. Kurpaya Hindi bolta hai. Just please don't be excluded if people are speaking Marathi. It's very easy to forget when you're in your own with people from your own language.
So, agar koi Marathi bolta hai to sahi ko aap unse bahut alag ho gaye aisa mat samjhiye. Aur jab hum dekhte hain ki apni bhasha bolne wale bahut sare log hain, ye bada mushkil ho jata hai, hum bhul jate hain.
And we mustn't let language be a barrier between us.
Aur humne ye jo bhasha hai, wo hame kisi prakar ki koi badha ya diwar khadi na kare, iska bhi khayal rakhna chahiye.
And please make sure those of you from Maharashtra that you do meet with people and get to know people from different states of India.
Aur kripaya jo Maharashtra se log hain, जो भारत से अन्य राज्यों से जो लोग आए उनके बीच सम्मिलित हुए उनसे अपना परिचय बढ़ाइए.
And then I've got some thoughts for the people from Bihar.
और जो बिहार से लोग आए उनके लिए कुछ मेरे मन में विचार आया.
Two of them were saying they felt a bit ashamed that there weren't more people from Bihar.
तो जैसे उन्होंने कहा है कि उन्हें बड़ी मतलब लज्जा महसूस हो रही है कि बिहार से बहुत अधिक लोग यहाँ नहीं आ पाए.
Well, personally, I'd have liked to have seen a lot more from Bihar.
वैसे रूप से मैं चाहता हूँ कि बिहार से अधिक लोग यहाँ आए.
But don't worry.
लेकिन चिंता मत कीजिए.
धीरे धीरे there will be more.
धीरे अधिक लोग आएंगे.
Next time there will be more.
अगली बार अधिक लोग आएंगे.
The time after that more.
और उसके पश्चात और भी अधिक लोग आएंगे.
And then one day Bihar will be like it used to be in the time of the Buddha, just a Buddha land.
और फिर जैसे बुद्ध के समय में बिहार था उस प्रकार से बिहार हो जाए.
And those of you from outside Bihar, perhaps particularly the Maharashtrians, will get to know the people from Bihar.
और जो खासकर बिहार से बाहर से आए हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, तो बिहार के लोगों से आप अपना परिचय बढ़ाएंगे.
See in what way you can support them in developing the Dhamma here in Bihar.
तो बिहार में लोगों को धम्म का कार्य आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से आप मदद कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं.
You can do quite a lot. Just by being friends, by coming here from time to time and meeting people and inviting them back to your home. So those are my messages for you all. Mix up. Chaska maska. Get all mixed up. So the different states and different languages all come together, mixed up. So that you don't know, oh, he's Bihari, he's Maharashtrian, she's from UP or whatever. Just human beings who are trying to practice the Buddha's Dhamma. And we're doing it in such an important place. For many hundreds of years, most people in India would have thought of this as the center of the whole universe. You know, just like Muslims think of Mecca as the center of the universe, Buddhists used to think of this as the center of the universe. They didn't think of it just as the center of this world, but of the whole universe. Now, in the ancient Indians and even the Buddhists had their own ideas about the universe. You know that modern science says that there was a big bang many, many billions of years ago. And the whole universe gradually came into existence. And some of them say that eventually, well, there'll be a sort of collapse again. And the universe will sort of disappear. And then it'll gradually come into being again. Another big bang will take place. Well, this was just the idea the ancient Buddhists used to have. They didn't have modern scientific equipment and they didn't discover things in the same way as scientists do today. But they had very similar sorts of ideas about the universe. They thought there were millions and millions of world systems. And these were always coming into being and passing out again over many, many millions of years. So what they believed was that the universe started with a great ball of flame. And gradually that ball of flame began to condense, like steam on a cool surface. And gradually the world began to crystallize. So they believed that the first place to crystallize was here. They thought that the Vajrasana, the place under the Bodhi tree where the Buddha gained awakening, was the first place to emerge when the universe was recreated.
तो ये जो वज्रासन है बोधि वृक्ष के नीचे सबसे पहले इसकी निर्मिति सबसे पहले यह अवतीर्ण हुआ।
And they believed that at the end of time, when the universe again disappeared into fire, that place was the last to go.
और फिर उनका ऐसा विश्वास था कि जब फिर से ये विश्व की अंतिम समय आएगा तो सबसे अंत में ये जो वज्रासन है ये यहाँ से फिर नष्ट होगा।
So it had a very, very special feeling for this place.
तो उनके मन में इस जगह के बारे में बहुत ही विशेष प्रकार की ऐसी भावनाएं।
Of course, this isn't scientifically true.
अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सत्य है।
It's not literally true that the Vajrasana was the first place to emerge.
अभी मतलब बहुत ही हम शब्द सहायता नहीं दे सकते कि वज्रासन ये सबसे पहले निर्माण हुआ।
But still, it's very important for us to appreciate what they were trying to communicate.
लेकिन हमारे लिए फिर भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी बात वो हमें बताना चाहते।
What they felt was this was this, that what happened here was so important that it must have some place in the creation of the universe.
तो जो कुछ यहाँ हुआ है वह इतना महत्वपूर्ण था कि जो भी मतलब विश्व निर्माण हुआ उसमें इस बात का बहुत ही बड़ा योगदान रहा।
They believed that the Buddha was the highest and best of beings.
उनका ऐसा विश्वास था कि बुद्ध जो है सबसे ऊंचे और सबसे अच्छे ऐसे मानव।
And where he gained enlightenment, where he gained awakening, must be the most important place in the universe.
और जहां उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की तो निश्चित ही विश्व की सबसे महत्वपूर्ण ऐसी जगह है।
And they had such strong feelings for Buddhagaya.
और बुद्धगया के बारे में उनके मन में बहुत ही ऐसा गहरा भाव था।
There were here so many monasteries, so many stupas, so many viharas.
तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मठ है, बहुत सारे विहार है, बहुत सारे स्तूप है।
For miles and miles around here, if you dig into the ground, you'll find ancient Buddhist remains.
तो यहाँ मैलों तक अगर आप देखेंगे, अगर कहीं आप खोदेंगे, तो आप देखेंगे कि पुराने जो बौद्ध अवशेष हैं, वो हमें दिखाई देंगे।
We can read accounts of Chinese pilgrims who came here more than 1,000 years ago.
तो हजार साल से भी अधिक समय पहले यहाँ जो चीनी मतलब यात्री हैं वे यहाँ पर आए थे।
And this was a truly wondrous place.
और सही में ये बहुत ही ऐसा अद्भुत इस प्रकार की जगह थी।
Just beautiful buildings everywhere.
हर जगह बड़ी सुंदर इमारतें थी।
So many Buddha images.
बहुत सारे बुद्ध रूप थे।
So many big stupas.
बहुत बड़े बड़े ऐसे स्तूप थे।
So it was a place of great importance for Buddhists all over the world.
तो जगत के सारे बौद्धों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जगह थी।
But the strange thing is, all of that disappeared.
लेकिन विचित्र बात यह है कि सारी ये चीजें लुप्त हो गई।
As Buddhism disappeared from India, Buddhagaya just got lost.
जैसे भारत से बुद्ध धर्म नष्ट हो गया, बुद्धगया भी जैसे मानो बिल्कुल खो गया।
The Mahabodhi temple just fell into ruin and became a Hindu temple.
महाबोधि विहार जो है वो पूरा मतलब ऐसे नष्ट होने लगा था, वो हिंदू विहार बन के रह गया था।
And Bihar, this Buddhagaya became more just a backward place in India.
और बुद्धगया यहाँ का बहुत ही पिछड़ा हुआ ऐसा स्थान बन के रह गया।
Nobody remembered the Buddha in India.
भारत में कोई भी बुद्ध को याद नहीं करता।
Nobody remembered Buddhagaya in India.
बुद्धगया को भारत में कोई याद नहीं करता।
It just been completely lost.
तो पूरी तरह से ये खो चुका।
That counter-revolution that Baba Saheb talked about had taken place.
और फिर बाबा साहब जो प्रतिक्रांति की बात करते हैं, वो प्रतिक्रांति यहाँ हो गई।
And it's strange, it was a British general who rediscovered Buddhagaya.
और ये बड़ी विचित्र बात है कि एक ब्रिटिश जनरल था जिसने बुद्धगया की खोज की।
I know that India doesn't have a lot to thank the British for, but at least they can thank them for that.
अब मैं जानता हूँ कि भारत जो है ब्रिटिश लोगों को कोई बहुत धन्यवाद देना नहीं चाहेंगे, लेकिन कम से कम इस बात के लिए दे सकते हैं।
It was General Alexander Cunningham who rediscovered the Buddhist past of India.
So General Alexander Cunningham jo hai unhone phir se Buddha Gaya ki khoj ki.
India had forgotten the Buddha.
Bharat jo hai Buddha Gaya ko bhul chuka tha, Buddha ko bhul chuka.
But it was a British general who read some of the ancient accounts and thought, well, this must be Buddha Gaya.
To ye jo angrez general hai usne कुछ बातें पढ़ी और उनको भी पता चला कि ये तो बुद्ध गया।
This must be Sarnath.
और ये सारनाथ होना चाहिए।
This must be Lumbini and so on.
और ये लुम्बिनी होनी चाहिए। इसी प्रकार से जगह उन्होंने खोज के निकाला।
So gradually he rediscovered ancient Buddhist India.
और धीरे धीरे उन्होंने ये जो प्राचीन भारत जो है इसकी पुनर्खोज की.
It's something really strange, something very strange for us to think about.
और इस सही में बड़ी विचित्र ऐसी बात है जब हम इसके बारे में सोचते हैं विचार करते हैं.
Buddhism had just disappeared.
बुद्ध धर्म जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका था.
And even the memory of Buddhism had disappeared.
और इतना ही नहीं तो बुद्ध धर्म की जो भी स्मृति थी याददाश्त थी वो भी लोग भूल चुके थे.
And yet as far as we know, the Buddhist culture of India was the highest point of Indian culture.
और जहां तक हम जानते हैं कि बौद्धों का जो भी यह संस्कृति थी भारत की सबसे ऐसा ऊंचा वो बिंदु था जब बौद्ध संस्कृति आती थी.
But it just been completely forgotten.
लेकिन उसको पूरी तरह से भुला दिया गया.
And the Mahabodhi temple, just a Hindu temple.
और महाबोधि जो विहार है एक केवल हिंदू मंदिर बन के रहे.
Buddha Gaya, just a small village, quite poor. In the back territory.
और बुद्ध गया जो है बहुत ही एक गरीब ऐसा एक गांव बन के रह गया जहाँ बहुत ही मतलब गरीबी.
What a huge change!
कितना बड़ा परिवर्तन है.
From this having been a place of so many monasteries and so many monks and nuns.
यहाँ पहले बहुत सारे ऐसे मठ थे बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनिया यहाँ निवास करते थे.
A place that people came on foot. From the farthest corners of the world to.
और जगत के अलग-अलग कोने से लोग पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे.
Sometimes people would come from Tibet, prostrating at every third step.
और कुछ बार ऐसा हुआ कि तिब्बत से लोग तीन कदम चलकर बिल्कुल ऐसा प्रणिपात करते हुए यहाँ तक पहुँचे.
I know in Maharashtra some people do that on the way to Pandharpur.
और मैं जानता हूँ कि महाराष्ट्र में पंडरपुर जाते वक्त भी कुछ लोग इसी तरह से करते हैं.
But that's just a few hundred miles.
लेकिन वो तो कुछ सौ मील या कुछ दूरी पर होगा.
But they used to do it for thousands of miles through the snows of Tibet.
और हजारों मील दूर से जहाँ मतलब इस प्रकार से बर्फ पड़ा हुआ है वहां से भी आते थे.
Just to come here.
केवल यहाँ आने के लिए.
No Indian railway system.
वहां कोई भारतीय रेल नहीं थी.
No coaches.
वहाँ कोई मतलब ऐसे बोगियां लगी नहीं थी.
No aeroplanes.
एरोप्लेन नहीं थे.
Only on foot could you come.
केवल पैदल चलकर ही आप आ सकते.
They used to come from Japan, from China, from all over the world.
तो जापान है चीन है अलग अलग ऐसे जगह से लोग यहाँ आते.
We know particularly of one pilgrim, Xuan Sung, who came from China.
तो हम जानते हैं कि वेन सेंग जो है जो चीन से आए थे उनके बारे में हम जानते हैं.
And he came through the vast deserts to the north of Tibet.
और बहुत बड़े ऐसे रेगिस्तान से वो तिब्बत की जगह से यहाँ तक पहुँचे.
Extremely dangerous, constantly being robbed by bandits and so on.
और बहुत ही खतरनाक उनकी यात्रा थी. हर बार जो डाकू लुटेरे जो है उनका खतरा बना रहता था.
Just to come to Buddha Gaya.
केवल बुद्ध गया आने के.
So we need to try to make it like that again.
हमें फिर से ही जगह को इसी प्रकार से बनाना होगा.
We are here now.
अभी हम यहाँ है.
We are here at the center of the universe.
अभी हम विश्व के बिल्कुल केंद्र में.
We are in Buddha Gaya where the most important event in human history took place.
और हम बुद्ध गया में है जहाँ मानवीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ऐसी घटना जा घटी क्योंकि वो जगह हम लोग.
We've come in many different ways.
हम अलग अलग मार्ग से आए हैं.
You've come by Indian rail.
आप भारतीय रेल से आए.
You've come by coach.
आप कोई बस से आए.
I flew from London.
मैं लंदन से उड़कर आया हूँ.
So we've come in so many different ways to be at the center of the Buddhist universe.
तो बौद्धों के विश्व का जो केंद्र बिंदु है वहाँ हम अलग अलग जगह से यहाँ आ पहुँचे.
What happened here is for the happiness of all humanity.
तो जो कुछ यहाँ हुआ सभी मानवता के कल्याण के लिए सुख के लिए कुछ हुआ.
If the world listens again to the Buddha, there can be peace, there can be justice again in the world.
अगर जगत फिर से बुद्ध को सुनता है तो फिर से यहाँ शांति होगी फिर से यहाँ कुछ अच्छाई होगी.
Human beings can feel fulfilled, satisfied deeply.
जो मानव है उसको बहुत ही संतुष्ट महसूस होगा उसको बहुत ही एक प्रकार का समाधान मिलेगा.
Again, liberty, equality and fraternity can flourish on this earth.
और फिर से इस पृथ्वी पर स्वतंत्रता समता बंधुत्व का विकास होगा.
From what happened here, the revolution can take place again.
जो कुछ यहाँ हुआ उससे ही फिर से क्रांति निर्माण हो सकती है.
So we're here in the spirit of pilgrimage.
तो यहाँ हम एक यात्री का मतलब जो चैतन्य होता है उस चैतन्य से यहाँ पर आए.
Now pilgrimage is a very very important Buddhist practice.
तो ये जो भी मतलब ऐसी धार्मिक यात्रा होती है बुद्ध धर्म में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा इसको आचरण समझा जाता है.
Now I want to make a distinction between pilgrimage and tourism.
तो जिसको हम एक प्रकार से धार्मिक यात्रा कहते हैं या जिसको हम केवल मतलब पर्यटन कहते हैं इसमें अंतर है.
In English there's a nice distinction between pilgrimage and tourism.
अभी अंग्रेजी भाषा में पिलग्रिमेज और टूरिज्म में बड़ा अच्छा फर्क बताया गया.
But in Hindi I know yatra does for both. Yeah.
पर्यटन.
But what I mean is you can come here just to have a nice time.
तो आप यहाँ आ सकते हैं केवल एक अच्छा समय बिताने के.
Just to see some nice sights.
तो जो भी अच्छे अच्छे मतलब दृश्य है या अच्छी चीजें है केवल उसको देखना है.
Eat some different food.
हाँ अलग अलग प्रकार का जो भोजन है उसको खाना है.
Look at different people.
अलग अलग लोगों की तरफ देखना है.
Hear different language.
अलग अलग भाषाओं को सुनना है.
And just have a happy time.
और केवल एक आराम से बड़े खुशी से रहना है.
Yes, just आराम से. Just relaxing, just free.
हाँ आराम से रहना है मुक्त रहना है.
That's good, it's not a bad thing to do.
अभी ये अच्छी बात है ये कोई बुरी बात नहीं है.
But it's not a pilgrimage.
लेकिन इसे हम धार्मिक यात्रा नहीं कहेंगे.
When you go to the Mahabodhi temple, you'll see some people are not there for a pilgrimage.
जब आप महाबोधि विहार में जाएंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ जो कुछ लोग आए हैं केवल वहाँ पर्यटक के रूप में नहीं.
They're just wandering about, no particular feeling.
तो कुछ लोग ऐसे वहाँ पर मैं इधर उधर देख रहे हैं कोई उनके मन में भावना नहीं है.
The other day I was walking around the Mahabodhi temple, just meditating.
तो कुछ दिन पहले मैं वहाँ महाबोधि जो विहार है वहाँ था शंकर मन कर रहा था ध्यान कर रहा था.
And there was somebody sitting right under the Bodhi tree with a mobile phone.
और एक आदमी जो है बोधि वृक्ष के नीचे मोबाइल फोन लेकर बैठा हुआ था.
And he wasn't talking to the Buddha.
और कोई बुद्ध से बात नहीं कर रहे थे.
There was some conversation about some arrangements or something like that.
तो कुछ तो व्यवस्था करने की उसके बारे में उनका वो संवाद चल रहा.
About where he was going to go next or something like that.
इसके बाद कहाँ जाना है क्या करना है इसके बारे में.
But it definitely wasn't a spirit of pilgrimage.
लेकिन एक धार्मिक यात्रा के चैतन्य से ये बातें नहीं हो रही.
And as I said, it's not a bad thing.
जैसे मैंने कहा कि कोई बुरी बात नहीं है.
But pilgrimage is something very definite.
लेकिन जिसको हम धार्मिक यात्रा कहते हैं ये कुछ निश्चित स्वरूप की होती है.
And that is what we are here for.
और इसी बात के लिए हम लोग यहाँ आए.
To the Buddha this was very important.
बुद्ध के लिए ये बात बहुत ही जरूरी है महत्वपूर्ण है.
We know from the Buddhist scriptures that he encouraged his disciples after to make these pilgrimages after his death.
तो हम पुराने ग्रंथों में देखते हैं कि बुद्ध अपने शिष्यों को इस प्रकार से प्रेरणा देते थे कि कुछ ऐसे स्थानों पर वे जाए.
He told them to come to Buddhagaya, to come to Kushinara and so forth.
तो वे कहते थे कि बुद्ध गया आइए कुशीनारा इसी प्रकार से बातें बताते हैं.
So why pilgrimage?
तो इस प्रकार के धार्मिक यात्रा की क्यों जरूरत है?
You know, couldn't we just be having this retreat in Nagpur or who knows, Jalandhar or Bhopal or whatever?
तो ये जो शिविर है हमारा नागपुर भोपाल या जालंधर कहीं भी हो सकता
है. Why pilgrimage?
तो इस प्रकार के धार्मिक यात्रा क्यों?
So there are two main reasons.
इसके दो मुख्य कारण हैं.
The first reason is that through pilgrimage we connect with the Buddha.
तो पहली वजह यह है कि इस प्रकार से धार्मिक यात्रा करके हम बुद्ध से हमारा संबंध जोड़ते हैं.
What we look at brings our mind there.
जो चीजें हम देखते हैं तो हमारा मन जो है वहां चले जाता है.
You know when you meet somebody who you haven't seen for some time.
जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको आपने काफी समय तक मिला नहीं.
Well, for instance, I haven't seen Amoga City for quite a long time.
तो उदाहरण के स्वरूप में अमोघ सिद्धि को बहुत समय से मैं मिला नहीं था.
Of course, I have thought of him when we've been apart.
अर्थात जब हम लोग अलग अलग थे तो मैं उनके बारे में सोचता था.
But as soon as I see Amoga City, well, I remember everything about Amoga City.
तो जब मैंने अमोघ सिद्धि को देखा तो अमोघ सिद्धि के बारे में सब कुछ मुझे याद आया.
I remember all the things we've done together in the past.
तो गत काल में जो कुछ हमने इकट्ठा किया वो सारी बातें मुझे याद आने लगी.
The hundreds of talks we've given together.
तो 100 से ऊपर कुछ प्रवचन हमने इकट्ठा दिए.
And you know all the times we've spent together just talking, just enjoying. So as soon as I see him, all of that's in my mind. So when you see things that are connected with the Buddha comes into your mind. Of course, I do think of Amoghasiddhi when he's not there. Who can forget Amoghasiddhi? when I'm actually with him, all that comes much more strongly and immediately into my mind. It's the same with the Buddha. You can think of the Buddha when you're not anywhere around anything to do with the Buddha. And indeed we should be trying to develop that skill. But when you're at the Bodhi tree, well, your mind comes straight to the Buddha. I came for the first time last year. And I felt as if I was in pulling away in a sort of dream when I came to the Bodhi tree. This is the place where the Buddha achieved awakening. And it was so much stronger for me just seeing that place. This tree, its great-grandparent, was the one under which the Buddha sat. And I almost can't believe that I'm here in this place. I'm as close to the Buddha physically as I will ever get. So that has a very, very powerful effect on the mind. You become much more deeply aware of the Buddha. And you feel his presence even.
Now,
in a way you get to know him. I found that very strong when I went to the Bodhi tree for the first time, and this time too. The Buddha comes alive in my imagination. And in a way I come closer to him. And as a result of all that, your faith deepens and strengthens. Remembering the Buddha, Buddhanu Smriti, is one of the main practices of Buddhism. Having the Buddha in your mind is one of the main practices of Buddhism. And through that practice, you develop a strong faith in the Buddha and desire to be like him. So I'm going to talk a little bit about faith before I talk about the life of the Buddha. Faith is the basis of the spiritual life. Faith is a trust, a confidence in the Buddha as a teacher. Well, let me give you an example again. This morning, Amrit Siddhi and Vijaya were leading the meditation practice. And they were giving instructions about how to do the practice. Well, if you are to follow these instructions, you have to have some confidence in what they're saying to you.
अगर इसका आपको आचरण करना है तो जो कुछ बनाया जा रहा है उस पर सबसे पहले आपका एक विश्वास होना चाहिए.
If you're thinking to yourself, what do they know? They don't know anything.
अगर आप सोचेंगे कि ये क्या जानते हैं, ये तो कुछ जानते नहीं है.
They don't do it properly.
हाँ, वे कुछ अच्छे ढंग से करते नहीं है.
Who are they?
ये कौन है?
If you think like that, when they're telling you what to do, you won't even listen properly.
और अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या करना है जब ये बताते हैं तब आप उसको ढंग से सुनेंगे भी.
Or if you do listen, you'll be starting to practice it and then thinking, no, this isn't the right way.
और अगर आप सुनते भी हैं तो फिर आपके मन में विचार आना नहीं, ये कोई सही तरीका नहीं.
We shouldn't count to 10, we should count to 11.
हाँ, हमें कुछ 10 तक गिनती नहीं करनी चाहिए, 11 तक गिनती अच्छी रहेगी.
We shouldn't count before or after the breath, we should count in the middle of the breath.
हाँ, तो सांस लेने के पहले या सांस छोड़ने के बाद हमें गिनती नहीं करना चाहिए, सांस के बीच में गिनती करनी चाहिए.
Then you have all these sorts of thoughts in your mind.
तो मन में इस प्रकार के अलग अलग विचार चलते रहेंगे.
So you won't do the practice.
और फिर आप वहाँ उस साधना को नहीं करेंगे.
And of course it won't work.
और अर्थात इससे कोई कार्य नहीं होगा.
If you don't have confidence, you won't make an effort.
अगर आपका विश्वास नहीं तो आप प्रयास भी नहीं करेंगे.
If you don't make an effort, you won't get any results.
और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कोई परिणाम भी नहीं निकलेगा.
And you'll get up and you see, they don't know what they're talking about.
और फिर जब आप उठेंगे तो आप कहेंगे कि वे लोग नहीं जानते कि क्या वो बता रहे हैं.
So because you've got no confidence in them, you don't do what they say, so your lack of confidence is confirmed.
और फिर आपका उन पर विश्वास नहीं है तो जो कुछ वे बता रहे हैं उसको आप नहीं सुनते और आपका विश्वास उन पर नहीं है, ये निश्चित हो जाता है.
So the Buddha is trying to tell us how to change the way we are.
बुद्ध ये बताने का हमें प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से हम है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं.
The Buddha is saying the way we are brings us suffering.
बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार से हम है इससे हम दुखों को पाते हैं, दुखों को भोगते हैं.
The Buddha is saying the way our minds work just brings us suffering and hurts other people.
बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा मन कार्य करता है इससे स्वयं भी हमें दुख मिलता है और औरों के लिए हम दुख पैदा करते हैं.
The Buddha is saying, I'm free from all that.
बुद्ध ही कह रहे हैं कि इन सब से मैं मुक्त हुआ हूँ.
I'm free from that suffering, I'm free from that harming.
तो ये दुख से मैं मुक्त हुआ हूँ और औरों को किसी प्रकार से कोई हानि पहुंचाने से भी मैं मुक्त हुआ हूँ.
He's saying, you can be just like me.
वे कहते हैं कि आप भी मेरे समान बन सकते हैं.
And then he says, this is how you do it.
और फिर वे कहते हैं यह बात इस प्रकार से आप कर सकते हैं.
If you follow my dhamma, you will become like me.
अगर आप मेरे धम्म का आचरण करते हैं आप भी मेरे समान बन जाए.
So you got to believe him.
आपको विश्वास करना होगा.
You got to have at least a basic confidence in him.
तो कम से कम एक मूलभूत विश्वास हमारा ऊपर चाहिए.
Of course, as time goes on, that confidence will deepen.
अर्थात जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये विश्वास हमारा और भी गहरा होते जाए.
But if you're just saying, who is the Buddha?
लेकिन आप कहेंगे कि ये बुद्ध कौन है?
It's just some buddhi.
हाँ, some buddhi.
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 Some clever man.
हाँ, तो केवल एक कोई बहुत ही होशियार ऐसा आदमी है.
Not a Buddha.
हाँ, कोई बुद्ध नहीं.
It's just, I don't know, just some professor or something like that.
या जैसे कोई प्रोफेसर या कोई तो भी है वैसे.
Or maybe some sannyasin.
या कोई सन्यासी.
Or just some beggar.
या जैसे कोई भिक्षुक है.
There were certainly people who thought of him like that at the time.
और निश्चित ही उनके समय भी कुछ लोगों ने उनके बारे में यही सोचा.
And if you don't have that confidence in him, if you think of him like that, you won't practice his dhamma.
और अगर ऐसा विश्वास उन पर आपका नहीं रहेगा तो आप उनके धम्म का आचरण नहीं करेंगे.
So you will not become free like he is.
और जैसे वे मुक्त हुए उस प्रकार से आप मुक्त नहीं होंगे.
So it's very important that we develop this deep faith and confidence in the Buddha.
तो ये बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी बात है कि बुद्ध में हमारा गहरा विश्वास हो, उनके प्रति हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा हो.
For many of us, we have that confidence because Baba Sahib had that confidence.
हम में बहुत सारे जो लोग हैं इस प्रकार का विश्वास हमारा बुद्ध में, क्योंकि बाबा साहब का विश्वास बुद्ध में था.
Baba Sahib considered the Buddha as his master.
बाबा साहब ने बुद्ध को अपना गुरु कहा.
He understood the Buddha to show the way to freedom.
उन्होंने बुद्ध को इस प्रकार से देखा कि जिन्होंने मुक्ति का मार्ग हमें दिखाया.
And many of us have deep faith in Baba Sahib.
और हम में से बहुत सारे लोगों का बाबा साहब पर बहुत ही गहरी हमारी श्रद्धा है.
If we've got faith in Baba Sahib, we should have faith in his master.
अगर बाबा साहब में हमारी श्रद्धा है तो उनके जो गुरु है उनमें भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए.
And that may be for many of us the way towards the Buddha.
और हम में से बहुत सारे लोगों के लिए बुद्ध की तरफ बढ़ने के लिए एक मार्ग है.
But we need to develop that strong confidence that the Buddha can show us the way to our own freedom and the freedom of all.
तो हमें इस प्रकार का विश्वास होना जरूरी है कि हमारे स्वयं की मुक्ति के लिए और सभी की मुक्ति के लिए बुद्ध हमें मार्ग दिखाते हैं.
So, what is this faith that we need to be developing?
So, श्रद्धा क्या है जिसको हमें विकसित करना है, जिसका हमें विकास करना है?
So, first of all, let me say what it isn't.
So, सबसे पहले ये क्या नहीं है, ये मैं पहले पहले कहना चाहूँगा.
First of all, it isn't superstition.
सबसे पहली बात ये अंधश्रद्धा नहीं.
It's not the belief that if I just make the right bribe to the Buddha, he will give me what I want.
तो जैसे अगर सही ढंग से कोई पैसे मैं अगर बुद्ध को दे दूंगा तो वो मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे, ऐसी बात नहीं.
A lot of religion is like that, isn't it?
तो बहुत सारे धर्म इसी प्रकार से हैं, नहीं क्या?
You're trying to bribe the gods.
आप जैसे मानो कुछ तो मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं.
You give them chai pani, they give you a son, they give you an exam, and so on.
तो आप चाय पानी के लिए कुछ दे देते हैं, फिर वो आपको पुत्र देते हैं, परीक्षा में पास होने के लिए मदद करते हैं.
So, it's not that.
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं.
Buddhist faith is not like that superstition.
बौद्धों की श्रद्धा इस प्रकार के अंधश्रद्धा के समान नहीं.
It's not blind belief.
ये किसी प्रकार से अंधे रूप से आप विश्वास नहीं करते.
It's not, oh, I believe fully in the Buddha.
ऐसा भी नहीं कि आप कहें कि मेरा पूरा बुद्ध पर विश्वास है.
So you say, well, what does the Buddha say?
फिर आप कहेंगे कि बुद्ध क्या कहते
हैं? I don't know. I just believe fully in the Buddha.
मैं तो नहीं जानता, लेकिन बुद्ध पे मेरा पूरा विश्वास है.
That's just blind faith.
तो ये भी एक अंधश्रद्धा है.
That won't get you anywhere.
इससे आप कहीं भी नहीं जाएंगे.
It's not slavery.
इसमें कोई गुलामी भी नहीं.
Oh Buddha, you are so great. I am so small.
Oh Buddha, आप तो बड़े महान हैं, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ.
Please save me. Take me to Nirvana.
तो कृपया मुझे बचा लीजिए, मुझे निर्वाण तक ले जाइए.
It's not that.
ये ऐसी भी बात नहीं.
That's not what faith is.
श्रद्धा इसे नहीं कहते.
Faith traditionally is said to have three elements.
तो पारंपरिक रूप से श्रद्धा के बारे में तीन बातें बताइए.
So while I'm talking, just reflect on yourself.
तो जब मैं आपसे बोल रहा हूँ तो अपने भीतर में आप इस पर चिंतन करिए.
Just sort of test yourself. Have I got this sort of faith?
तो स्वयं की आप परीक्षा कीजिए कि क्या मेरी श्रद्धा इस प्रकार से है.
There's nobody here who's got so much faith they can't do with more.
तो यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि इतनी श्रद्धा उनकी बढ़ चुकी है कि उसके आगे वे कुछ नहीं कर सकते.
Including me.
उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ.
Especially me.
और विशेष रूप से मैं.
Every one of us can improve in this sort of way.
तो इस प्रकार से हम में से हर एक व्यक्ति जो है स्वयं में अधिक विकसित कर सकते हैं.
So what are these three?
ये तीन बातें कौन सी?
First of all, this intuitive attraction. Yeah?
तो सबसे पहले एक आंतरिक आपको आकर्षण होता है.
You see an image of the Buddha.
तो आप बुद्ध का रूप देखते हैं.
You hear some words of the Dhamma.
आप धर्म के कुछ शब्द सुनते हैं.
You communicate with the Sangha.
आप संघ के साथ कुछ संपर्क या संवाद प्रस्थापित करते हैं.
And you feel strongly drawn from your heart.
और आपके हृदय से बहुत ही आप उसके तरफ आकर्षित होते हैं.
Not thinking about it.
आप उसके बारे में सोचते नहीं है.
You say, yes, this is what I want.
और आप कहते हैं कि यही बात है जो मुझे चाहिए.
I remember when I was looking at religions, I'd left behind my own native religion.
तो जब मैं धर्मों के बारे में सोच रहा था, मेरा जो स्वयं का धर्म था उसको मैंने छोड़ दिया.
And I read from many different world religions.
और जगत के जो अलग अलग धर्म है उसका मैंने अभ्यास किया.
But I just read a few words of a Dhamma book and I thought, yes, this is it.
और मैं कुछ थोड़े मतलब धर्म की कुछ किताबें पढ़ी और मेरा विश्वास हो गया कि हाँ यही है जो मुझे चाहिए.
Even if somebody had asked me what is it, I couldn't really have said.
अगर उस समय किसी ने पूछा होता कि ये क्या है तो शायद मैं बता नहीं पाता.
I just knew that what I was reading was my own deepest needs.
मैं ये जानता था कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ यही मेरी कुछ गहरी जरूरत है जो मुझे पूरी हो रही.
So you want to come closer and closer.
और फिर आप उसके अधिक अधिक करीब आते हैं.
There's a famous story in the Buddhist text.
तो बौद्ध ग्रंथ में एक बड़ी प्रसिद्ध ऐसी कहानी है.
There's a beggar.
तो एक भिक्षु होता है.
And no, not a
भिक्षु होता है.
Yeah. He is looking for some food. You know, the beggar has his own way of seeing the world. You know, you see your white skin and you think that maybe you'll get some more money that way. The beggars have their own science. I often find that interesting. They know exactly when to stop. They know that if they go on a little bit further with some people, they will get something. And some people, they know it's a waste of time. So this beggar was like that. So where am I going to get some food? And he saw a huge crowd. And so he came close, because a crowd, there'd be some gifts there. And it was a crowd of people listening to the Buddha. So he's looking around, well, who can I, yeah, not him, not him, or maybe he might have something. But then he catches sight of the figure around whom everybody's gathered. And he just completely forgets what he's there for. And he just pushes through the crowd, comes to the Buddha's feet, and says, please, teach me. So the first kind of faith is like this. You just feel drawn. It's a bit like love, you could say. All that love that Hindi movies are about. You can't live without her. You just see her one time, you can't live without her. Well, it's like that. It's quite interesting. In a few days' time, we'll have a quite famous kawwal from Lucknow. He's from the Sufi tradition, the Islamic Sufi tradition. But very kindly, he's going to do some Buddhist kawwal for us. And very much, this is the sort of faith that he will be giving expression to. There's very strong attraction. It's a bit like seeing something beautiful. Maybe you see a beautiful sunset. Sometimes when the sun goes down, the colors are so glorious. And here particularly the sun seems so big as it goes down into the horizon. And it goes that deep, deep red that sort of warms you right to your heart. You don't think about it. You just immediately, spontaneously respond to it. Or maybe some beautiful music. Maybe some ghazal. And then you hear one line from the ghazal. And you just go, wow. Just completely spontaneously, no thoughts, no premeditation. So we need to let our hearts respond to the Buddha. We need to go to the foot of the Bodhi tree with that spirit. His spirit of delight and wonder and attraction and gratitude. This is a very, very important aspect of faith. But it's not enough.
लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है.
It's just one aspect of faith.
श्रद्धा का ये केवल एक अंग है.
The second kind of faith is what you might call reasoned conviction.
और दूसरा जो श्रद्धा का बात है, तो आप तर्क से मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं.
You're attracted.
आप आकर्षित हुए.
You listen to the Buddha.
आपने बुद्ध को सुना.
And what you hear convinces you.
तो जो कुछ आप सुनते हैं, इससे आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं.
You think, yes, that is true.
आप कहते हैं कि हाँ, यही सत्य है.
My experience backs that up.
मेरा जो अनुभव है, ये अनुभव भी यही बात कहता है.
In Buddhism, you're never asked to believe anything that's against reason.
बुद्ध धर्म में ऐसी किसी बात को आपको नहीं बताया जाता है कि जो तर्क के विसंगत है.
Buddhism is an intelligent religion.
बुद्ध धर्म एक प्रकार से बहुत ही क्या बुद्धि से संबंधित ऐसा धर्म है.
To really have faith in the Buddha, you have to engage your intelligence with what the Buddha has to say.
अगर बुद्ध धर्म में आपकी श्रद्धा निर्माण करनी है, तो फिर आपके बुद्धि का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि बुद्ध क्या कह रहे हैं.
So the Buddha says, all conditioned things are impermanent. Sabbe sankhara anicca.
So Buddha कहते हैं कि जो भी संस्कारी जैसी चीज है, वे अनित्य है.
So you think, well, is that true?
फिर आप सोचते हैं कि क्या ये सत्य है?
Well, yes, it's true of me.
हाँ, ये तो सत्य है, मेरे साथ ऐसा है.
I'm going to die one day.
एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी.
Ah, but what about this earth?
लेकिन इस पृथ्वी के बारे में क्या?
But no, this earth one day will disappear.
तो पृथ्वी भी एक दिन पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी.
What about the sun?
सूरज के बारे में क्या?
One day that will disappear.
एक दिन वो भी लुप्त हो जाएगा.
So you think it through.
और फिर आप सोचते हैं कि ये सत्य है.
You think about what the Buddha says and you try to see whether you're convinced or not.
और फिर आप बुद्ध जो कुछ कह रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं, फिर आप देखते हैं कि सही में ये बात आपको जस्ती है या नहीं.
And eventually you get that aspect of faith as a deep conviction in the truth of what the Buddha says.
और फिर बाद में आप देखते हैं कि जो कुछ बुद्ध कह रहे हैं उसमें पूरा भरोसा आपको हो जाता है और इस प्रकार से आपकी श्रद्धा जो है वो बनती है.
It's not enough just to be attracted.
केवल आकर्षित होना ही पर्याप्त नहीं.
Some people, you know, they just stay in that stage.
कुछ लोग केवल इसी स्तर पर बने रहते.
And many religions just ask you to stay in that stage.
और बहुत सारे धर्म आपको इसी स्तर पर बने रहने के लिए कहते हैं.
But in Buddhism we say, no, you must also be convinced.
लेकिन बुद्ध धर्म में हम कहते हैं कि नहीं, आपका पूरा इस पर भरोसा होना चाहिए.
You must be convinced through your own inquiry.
तो आपने स्वयं इसकी खोज करके पूरी तरह से भरोसा कर लेना चाहिए.
But even this isn't enough.
लेकिन ये बात भी पर्याप्त नहीं.
You can have a strong attraction.
आपका बहुत ही गहरा आकर्षण हो सकता है.
You can be deeply convinced.
आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं.
But then do nothing.
लेकिन आप कुछ भी नहीं करेंगे.
You can do a lot of puja.
आप बहुत सारी पूजा करेंगे.
You can read lots of books.
बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे.
But never actually practice the Dhamma.
लेकिन सही में धर्म का कभी आचरण नहीं करेंगे.
So there's a third aspect of faith.
तो श्रद्धा का तीसरा अंग है.
Which is confident commitment.
तो जिसमें एक प्रकार से विश्वास से आप उसके साथ प्रतिबद्ध हो गए.
First of all, you need to believe that you can do it.
सबसे पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि आप यह कर सकते हैं.
This is something really to think about.
तो ये कैसी बात है जिसके बारे में हमने सोचना है?
You may find that you believe the Buddha attained awakening.
तो आप देख सकते हैं कि आपका इस पर विश्वास है कि बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की.
You may even be convinced by his teaching.
और उनकी शिक्षा से भी आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते.
But then you say, oh no, but not me, I can't do this.
लेकिन फिर आप कहेंगे, नहीं बाबा, मेरे लिए नहीं, मैं ये नहीं कर सकता.
I'm not a clever person.
मैं कोई उतना बुद्धिमान नहीं.
I'm too young.
मैं तो बहुत छोटा हूँ.
I'm too old.
मैं ज्यादा बुढ़ा हूँ.
I'm a man.
मैं पुरुष हूँ.
I'm a woman.
मैं स्त्री हूँ.
I'm English.
मैं इंग्लिश हूँ.
Or whatever it is.
जो भी कुछ हूँ.
Oh, I'm too poor.
मैं तो बहुत गरीब हूँ.
Or I'm too busy.
मैं बहुत ही व्यस्त हूँ.
So in many ways you can think, yes, the Buddha is speaking the truth. I love the Buddha, but I can't do anything.
तो हम ऐसा कहेंगे कि हाँ, बुद्ध तो सबसे बता रहे हैं, बुद्ध के प्रति मेरे मन में प्यार है, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता.
This is so important for us to really connect with.
लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ सही हमने हम स्वयं को जोड़ के देखना चाहिए.
Do you believe that you can achieve what the Buddha achieved?
तो क्या आपका इस बात पर विश्वास है जो कुछ बुद्ध ने प्राप्त किया
Of course there will be lack of confidence. I think one of the consequences of the hierarchical society of caste is lack of confidence. We don't believe in ourselves. But we must believe in ourselves if we are to have real faith in the Buddha.
अगर सही में बुद्ध में हमारी श्रद्धा हमें निर्माण करनी है तो स्वयं पर हमें विश्वास करना होगा.
We need to believe in our own capacity.
हमारी क्षमताओं पर हमें विश्वास करना होगा.
Each one of us has that capacity.
हमें से हर एक में इस प्रकार की क्षमता है.
This is the great basis of the Buddha's teaching.
बुद्ध की शिक्षा का यही सबसे मूलभूत आधार है.
Every man, every woman, regardless of where they come from, what age they are, can make steps towards the Buddha. This is why Buddhism is a religion of equality. So, yes, we must have this sort of confidence in ourselves.
तो इस प्रकार से स्वयं में हमारा विश्वास होना ही चाहिए.
But it's not enough.
लेकिन ये पर्याप्त नहीं है.
We have to actually set out.
लेकिन हमें सही में मार्ग पर निकलना पड़ेगा.
We need to make the steps to achieve the Buddha's realization.
तो बुद्ध का जो बुद्धत्व है उसको हमें पाने के लिए हमें कदम उस दिशा में बढ़ाने पड़ेगा.
So Buddhist faith is quite different.
तो बौद्धों की जो श्रद्धा है वो कुछ अलग है.
इट्स हार्ट,
तो वहाँ हृदय है.
इट्स हेड,
वहाँ हमारा दिमाग है.
एंड इट्स फीट,
और हमारे पैर है.
द फीट हैव टू सेट आउट एंड वॉक द पाथ.
तो हमारे जो पैर है उनको चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा.
द हार्ट नीड्स टू फील longing to tread the path.
और हृदय जो है उसमें एक बड़ा आकर्षण चाहिए, भाव चाहिए वहां तक जाने का.
The head needs to understand the path.
और हमारा जो दिमाग है उसको मार्ग ठीक ढंग से समझ में आना चाहिए.
And the feet have to walk the path.
और ये जो पैर है उसको मार्ग पर चलना.
So this is the faith that we're trying to develop.
और यही श्रद्धा है जिसका हम विकास करने का प्रयास कर रहे हैं.
This is the first reason why we come on pilgrimage.
और ये पहली वजह है जिस वजह से हम ये धार्मिक यात्रा पर यहाँ हैं.
We're trying to strengthen this kind of faith.
तो हम इस प्रकार की जो श्रद्धा है उसको मजबूत बना रहे हैं.
So when you, while you're here, be here in that spirit.
तो जब यहाँ है तो इस प्रकार की प्रेरणा में आप रहिए, चैतन्य में रहिए.
Remember what you're trying to do.
इस बात को याद रखिए कि आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं.
Act in a respectful manner, a mindful way.
तो बहुत ही स्मृति पूर्वक बड़े आदर से आप यहाँ रहिए.
Be aware of the significance of what took place here.
तो यहाँ जो कुछ हुआ है उसके महत्व के बारे में स्मृति जो है बनाए रखें.
Try an imagination to be with the Buddha.
अपने कल्पना में आप बुद्ध के साथ है इस प्रकार से प्रयास कीजिए.
Don't just be a tourist.
केवल आप पर्यटक के रूप में यहाँ मत रहें.
There's a second reason for pilgrimage here.
तो दूसरी वजह जो धार्मिक यात्रा हम यहाँ कर रहे हैं.
Here at Buddha Gaya, there are so many Buddhists from all over the world.
तो यहाँ बुद्ध गया में जगत के बहुत सारे जो बहुत आए हैं.
And in the past, crores of people have come here.
और हम भूतकाल में देखेंगे कि करोड़ों लोग यहाँ पर में आ चुके.
So we're, by being here, we're expressing our solidarity with the entire Buddhist Mahasangha.
तो यहाँ आकर जो सारे जो पूरे बहुत जगत के लोग हैं उनके साथ हमारी जो एकता है उसको हम यहाँ व्यक्त कर रहे हैं.
By being here, we're declaring that we're part of this great brotherhood, sisterhood of the Buddhist Mahasangha.
तो यहाँ आकर बौद्धों का जो महासंघ है उसमें हम उनके भाई और बहन हैं ऐसा हम यहाँ पर में व्यक्त कर रहे हैं.
There are all our Tibetan friends here.
यहाँ हमारे बहुत सारे तिब्बतन मित्र भी हैं.
Some of them peeping in the back there.
कुछ लोग वहाँ झांक कर देख रहे हैं.
But as soon as I mentioned them, they ran away.
जैसे उनका नाम लिया वो आगे भाग गए.
Yes, there's so many Tibetans here because it's Buddha Gaya.
तो बहुत सारे तिब्बतन यहाँ पर में क्योंकि ये बुद्ध गया है.
And they have such faith in the Buddha.
और बुद्ध पर उनकी बहुत श्रद्धा है.
No, not waving back. But yeah, and be aware of them here. We've got so many of these monks and nuns staying here.
तो आप उनके बारे में जागरूक रहिए बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनियां यहाँ पर में यहाँ निवास कर रहे हैं
They're your brothers and sisters.
वे आपके भाई और बहनें हैं
They may not realize that you're their brother and sister.
शायद उन्हें ये पता नहीं चल रहा होगा कि आप भी उनके भाई और बहनें हैं
They're used to thinking of Indians as not Buddhists.
और वे शायद ये ऐसा ही सोचेंगे कि भारत में लोग बौद्ध नहीं हैं
But as they come to realize they're so happy that they're a sincere practicing Buddhist. In India.
लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि भारत में बहुत ही प्रामाणिक तौर पर आचरण करने वाले बौद्ध हैं, उनको बड़ी खुशी होगी।
So there are many, many Buddhists from all over the world, right here in Buddhagaya.
तो बुद्धगया में यहाँ पूरे जगत से बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के बौद्ध हैं।
Chinese, Thais, Koreans, Japanese, Sri Lankans, Vietnamese, Cambodians, Laotians, Tibetans, all those. Even quite a lot of Westerners are here.
So, बहुत सारे लोग पश्चिम से भी आए हैं.
And many of those will be Buddhists.
और बहुत सारे लोग जो हैं वो बौद्ध हैं.
They all share the Buddha Dhamma with you.
तो वे सभी लोग बौद्ध धर्म आप लोगों के साथ बांटते हैं.
So, in being here, have a sense of your solidarity with them.
तो यहाँ आकर एक प्रकार से उनके साथ एक एकता को आप महसूस कीजिए.
They all practice in different ways.
वे अलग-अलग प्रकार से आचरण कर रहे हैं.
When they're at the Bodhi tree, they'll do different things.
तो बोधि वृक्ष के पास आने के बाद वे अलग अलग चीजें करते हैं
Feel with them, try to understand them.
तो उनके साथ आप अपने भावनाओं को जोड़िए उनके साथ रहने का प्रयास कीजिए
For instance, Tibetan Buddhists practice in a very, very colorful way.
तो जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए जो टिबेटन बौद्ध है तो बहुत ही मतलब उनका जो भी चीजें है बड़े अलग ढंग से होती है बड़े रंगीली होती है
When you first see them, you may think, oh, this is just Hinduism.
पहली बार आप सोच सकते हैं कि ये तो हिंदू धर्म के समान ही लग रहा है
But it's not.
लेकिन ऐसा नहीं
It's Buddhism.
ये बुद्ध धर्म ही
It's based firmly in the same principles of the Dhamma that you practice.
तो जो धर्म का आप आचरण करते हैं उसी प्रकार के जो तत्व है उस पर ही वो उनका टिबेटन जो बुद्ध धर्म है वो आधारित
They believe in no permanent God.
वे इस बात पर विश्वास रखते हैं कि कोई भी नित्य ऐसा ईश्वर नहीं
They believe in anatta, anatman.
वे अनाता अनात्मा पर विश्वास करते
हैं। They have the same basic beliefs as we have.
तो जैसे हमारे विश्वास है इसी प्रकार के मूलभूत विश्वास उनके भी हैं।
They express it through their own culture in their own way.
तो वे उनकी जो संस्कृति है उनका जो तरीका है उससे इसकी अभिव्यक्ति करते हैं।
And indeed, they're some of the most committed and active Buddhists alive today.
और बहुत सारे उनमें से बहुत ही प्रतिबद्ध और बहुत ही सक्रिय ऐसे बहुत ही जीवित हैं।
So pilgrimage strengthens our faith in the Buddha.
तो ये धार्मिक यात्रा से बुद्ध के प्रति की हमारी जो श्रद्धा है वो मजबूत होगी है।
And it strengthens our solidarity with the Buddhist world.
और बौद्ध जगत के साथ हमारी जो एकता है वो भी और उससे दृढ़ होगी।
With that great Mahasangha.
और ये महासंघ के साथ हम दृढ़ता से एक होते।
Okay. चलिए। Short break. Now carry on.
छोटा विश्राम ले जो हम आगे बढ़ेंगे।
So I've said all that, but I'm supposed to be talking about the life of the Buddha.
तो ये सब बातें मैंने कही हैं, लेकिन मैं यहाँ बुद्ध के जीवन के बारे में कहने वाला हूँ।
So I'm going to say a little bit about that, at least start the topic. I won't keep you too long.
तो उसकी थोड़ी शुरुआत मैं करूँगा, बहुत देर तक मैं आपको यहाँ बिठा के नहीं रखना चाहता हूँ।
I just want to introduce the topic of the life of the Buddha so that we can connect more strongly with him.
तो बुद्ध के जीवन के बारे में थोड़ा प्रासंगिक रूप से कुछ कहना चाहूंगा ताकि हम उसको और भी गहराई से अपना संबंध जोड़
I'm supposed to be giving these talks on the life of the Buddha.
तो यहाँ मैं बुद्ध के जीवन के ऊपर प्रवचन देने वाला था
Unfortunately, I haven't been able to consult Dr. Salunke's book because it's in Marathi.
और दुर्भाग्यवश डॉक्टर सोलंके जी जो है उनका किताब को मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो मराठी में
But actually, we don't really know much about the early life of the Buddha.
वास्तविक देखा जाए तो बुद्ध के जीवन के शुरू का जो काल है उसके बारे में हम अधिक कुछ जानते हैं
We know a great deal about his life after his enlightenment.
बुद्धत्व के बाद के जीवन के बारे में बहुत कुछ हम जानकारी है
We've got many, many discourses, sutras, which tell us what the Buddha said, what he did.
तो बहुत सारे सूत्र हमें ये बताते हैं कि बुद्ध क्या करते थे, बुद्ध ने क्या पढ़ाया, क्या उन्होंने कुछ कहा।
But we know very little really about what happened before that.
लेकिन उसके पहले सही में क्या हुआ था, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी हमारे पास।
There are many, many legends and stories.
बहुत सारी दंतकथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं।
But the most reliable sources, the most reliable historical sources, don't tell us much about his early life. The Buddhist scriptures, particularly the Pali Canon, gives us some details, but very, very little.
तो बौद्ध जो ग्रंथ है खासकर पाली ग्रंथों में कुछ बातें बताई गई लेकिन वो बहुत ही कम है।
I think that's very, very interesting.
तो मुझे लगता है बड़ी रोचक ऐसी बात है।
It's as if the Buddha wasn't really that concerned with his early life.
तो जैसे मानो उसके पहले का जो कुछ बुद्ध का जीवन था उसके बारे में भी ज्यादा सोचते नहीं थे, ज्यादा चिंतित नहीं।
He and his disciples weren't bothered about that.
वे और उनके जो शिष्य है उसकी उतनी परवाह नहीं करते।
Usually when you meet somebody, You find out all about their family, their parents, their upbringing, where their village was, and so on.
अक्सर आप किसी को मिलते हैं तो आप देखते हैं कि उनका परिवार कौन सा था, किस प्रकार से मतलब उनका पालन पोषण हुआ, कैसे उनके परिवार वाले रहे वगैरह.
And we spend a lot of time talking about our pasts.
और बहुत सारा हमारा जो भूतकाल है उसके बारे में हम चर्चा करने में बिताते.
But the Buddha wasn't that interested in that.
लेकिन बुद्ध को इसमें उतनी रुचि नहीं.
What he was interested in was the Dhamma, the practice of the Dhamma.
लेकिन उनकी रुचि इस बात में थी कि जो कुछ धम्म है और धम्म का आचरण.
So this is why I think, at least, that there isn't so much about his early life in the Pali Canon.
और शायद इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पाली ग्रंथों में उनके शुरू के जीवन के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिली.
They weren't that interested. They weren't that bothered.
तो वे उनकी उसमें उतनी रुचि नहीं थी, उसकी उनको उतनी परवाह भी नहीं.
What we do know is that he was born sometime 2,550 years ago or so.
तो हम ये जानते हैं कि 2,550 साल पहले वगैरह उनका जन्म हुआ.
There are different traditions as to exactly when he was born.
तो अलग अलग परंपराएं बताती हैं कि उनका जो जन्म है कब हुआ था.
And we fairly reliably know that he was born in Lumbini in Nepal.
तो हम इतना तो जानते हैं कि लुम्बिनी जो नेपाल में भी वहाँ उनका जन्म हुआ.
We know that his father was called a Raja, Suddhodana was his name.
हमें जानते हैं कि उनके पिता राजा थे, सुद्धोधन का नाम था.
And he was a leading figure in the Shakya tribe, which was a small republican clan in that area.
तो शाक्य जो एक समूह था वहाँ का, तो उसके वे एक नेता थे, प्रमुख थे.
He wasn't the absolute leader, but he seems to have been one of the leaders, maybe even the elected leader at that time.
तो पूरे उसका वो नेता नहीं थे, लेकिन वो उतना जो उनका शाक्य कुल था, उनके वे एक नेता के रूप में.
The exact status of his father is not that clear.
तो वास्तव में उनके पिता क्या थे, वो भी बहुत स्पष्ट नहीं.
His mother was the daughter of another Raja.
उनकी जो माता है, दूसरे राजा की कन्या थी.
Her name was Mahamaya.
उनका नाम महामाया था.
And she died in giving birth to the Buddha.
और बुद्ध के जन्म के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई.
And he was brought up by his maternal aunt, Mahaprajapati Gautami.
और फिर उनके जो मौसी है महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया.
We don't really know much more than that.
इसके आगे हम बहुत कुछ नहीं जानते.
Most of what's said comes quite a bit later. And it's obviously made up, some of it.
और कुछ चीजें उसके पश्चात निर्माण हुई और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि वो बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी गढ़ी गई.
But you do get a definite impression of what the Buddha's upbringing was like.
लेकिन इतना तो आपको पता चलता है कि बुद्ध का जो पालन पोषण हुआ, किस प्रकार से वे बड़े हुए, ये हमें पता चलता
है. He was brought up in North India at that time.
उस समय जो उत्तर भारत था वहाँ उनका वे बड़े हुए.
And life would have been quite good there and quite simple.
तो उनका जीवन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सीधा था.
There would have been forest everywhere.
सब तरफ जो है जंगल थे.
In the Buddhist scriptures, you again and again get reference to the Mahavana. Vana, the yeah.
हाँ, वन. तो आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे बड़े-बड़े महावन हैं, इसका जिक्र वहाँ आता है.
Everywhere, all the way from Kanyakumari right up to the Himalayas, forest everywhere.
तो कन्याकुमारी से तो बिल्कुल हिमालय तक जहाँ आप देखेंगे सब तरफ आपको जंगल दिखाई.
The population was much smaller.
उस समय की जो लोक संख्या है बहुत ही कम थी.
And yes, there seemed to have been a wealthy and quite peaceful society at that time.
तो उस समय बहुत ही मतलब ऐसे अमीर और बहुत ही शांततापूर्वक ऐसा समाज था.
And people would have lived their lives always with an awareness of this great forest around them, with all its wild animals.
और वहां जो लोग रहते थे उनके इर्द गिर्द जो भी जंगल है उसमें जो भी जंगली जानवर है उनके जागरूकता के साथ में वहां रहते थे।
The soil was quite fertile.
यहाँ की जो भूमि है बहुत ही मतलब अच्छी थी बहुत ही फसल देने वाली थी।
There was quite a lot of trade passing through India.
और बहुत सारे जो व्यापारी है या भारत में आते जाते थे।
So the Buddha would have come from a wealthy family living a quite good but very very simple, more like a village life.
तो बुद्ध जो है बहुत ही अमीर से परिवार का है लेकिन बहुत ही सादगी भरा जो जीवन है गांव का होता है ऐसा जीवन।
And around him, well, he was living in this Shakya Republic, we say. It would have been a largish clan of people living together. With its own sort of more or less democratic organization. That means democratic for the higher people, men. But yes, a pretty good life, a pleasant life.
लेकिन एक बहुत अच्छा जीवन था बहुत ही उसमें आनंद था सूचना
क्वाइट सिंपल
बहुत ही सादगी भरा।
The Buddha almost certainly couldn't read.
तो बुद्ध जो तो पढ़ नहीं सकते थे।
That's quite important to remember.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखनी है।
At that time, relatively few people would have known how to read.
तो शायद उस समय बहुत ही कम लोग हैं वो जानते थे कि कैसा पढ़ना है।
Mainly the Brahmin caste.
तो जो ब्राह्मण जो जाते हैं वही।
And even all of them wouldn't have read.
और बहुत सारे लोग उनमें भी थे जो पढ़ नहीं सकते।
And he would have, of course, learned from his own tribe.
So, उन्होंने अपनी मतलब जो जनजाति है उनसे कुछ सीखा.
So, quite an ordinary, simple life.
So, बहुत ही सर्वसामान्य सादगी भरा उनका जीवन.
He didn't have a PhD.
उन्होंने कोई PhD भी प्राप्त नहीं की.
Couldn't even read, perhaps.
शायद वो पढ़ नहीं सकते थे.
Very likely, couldn't have read.
बहुत ऐसी संभावना क्यों पढ़ भी नहीं सकते.
Wouldn't have known so much about the world as we know today.
तो आज हम दुनिया के बारे में जितना जानते हैं उतना भी वे शायद नहीं जानते।
So quite a simple, good human life.
तो बहुत ही सादगी भरा एक अच्छा मानवीय जीवन उनको मिला।
He wasn't an extraordinary man in that sense.
तो एक अलग अर्थ से देखा जाए तो बहुत ही अनोखे ऐसे कोई इंसान थे ऐसी बात।
Later tradition made him into a prince with many palaces and all that.
बाद की जो परंपरा है उन्होंने बताया कि उसके बहुत सारे राजमान थे बड़ा राजकुमार था वगैरह।
But as far as I'm aware, he doesn't say anything about that himself in the canon.
लेकिन हम ग्रंथों में देखते हैं कि बुद्ध स्वयं अपने बारे में ये सब बातें नहीं कहते।
So this is the sort of background he came from.
तो इस प्रकार की एक पार्श्वभूमि है जहाँ से वे आते हैं।
If you like, just an ordinary human being.
अगर आप चाहे तो सोच सकते हैं कि सर्वसामान्य वे मानव।
Just like us.
जैसे हम हैं।
This is the important message of this stage of his life.
तो उनके जीवन के उस स्तर पर इस प्रकार का ही उनका जीवन था।
He didn't descend from the sky.
तो आकाश से उनको कोई भेजा नहीं गया था।
Just born like we were born.
जैसे हमारा जन्म हुआ उसी प्रकार से उनका भी जन्म हुआ।
He just grew up like we grew up.
जैसे हमारा विकास होता है उसी प्रकार से उनका विकास।
So really, at this level, the Buddha is no different from us.
तो इस स्तर पर अगर हम देखते हैं तो बुद्ध हमसे कोई भिन्न नहीं है।
He's not somebody different.
So, ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब बिल्कुल ऐसे जो हमसे बिल्कुल हटकर अलग है।
We can't say, well, he can do that because he was like this.
तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वे ये कर पाए क्योंकि वे इस प्रकार से थे।
He's just like us.
हमारे ही समान।
So what he did, we can do.
तो जो कुछ उन्होंने किया है, हम भी वही बात कर सकते हैं।
This is the important message.
ये महत्वपूर्ण संदेश है।
Each of us could be like him.
हमें से हर एक व्यक्ति उनके समान बन सकता है।
Each of us can become like the Buddha.
हमें से हर एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है।
If we have faith, if we make an effort, we will become more and more like the Buddha.
अगर हमारे मन में श्रद्धा है तो हम अधिक अधिक बुद्ध के समान बने।
So this is what we should reflect first of all when we see the Bodhi Raksha.
तो Bodhi Raksha में जब हम देखेंगे तो इस बात का हमें सबसे पहले चिंतन करना चाहिए।
The man who sat down here was just like us.
तो जो आदमी यहाँ बैठा था वो हमारे ही समान था।
He had ears, nose, tongue and so on.
तो उनके भी कान थे, नाक थे, जीवा थी, इस प्रकार।
When a mosquito bit him, it hurt.
जब मच्छर उनको काटते थे उनको भी तकलीफ होती।
He enjoyed some food and didn't like us. He suffered from illness. It was just like us. So we need to absorb this message very, very deeply. Each of us could be sitting under that Bodhi tree. If we only have faith, if we make the effort, we can be sitting under that Bodhi tree. Well, that's all I want to say for today. I've only said a little bit about the life of the Buddha. I've told you what we mainly know about his birth and background. And I'd like you to think deeply about what that signifies for you. Do you really feel the Buddha is like you? Do you feel that you could do what the Buddha has done? If you have that confidence, then you'll make steps towards the Buddha. So we'll leave the story there for the time being. We'll leave it just with the Buddha as a human being. Not just a human being, of course. An Indian. So you have a special identification with the Buddha. Because, well, he came from the same cultural and even ethnic background as you. So we English, we can't do it, of course. No, that's not true, because I'm a human being too. I may be an Englishman, but I'm a human being. But still, for you, there must be a special sense of identification with the Buddha. The Bhumiputra, as Dr. Solanke's book describes him.
Dr. Solanke ji ki pustak hai, usme iska varnan hai.
You're Bhumiputra and Putri, so you're like him.
To aap Bhumiputra aur Bhumiputri hai, to aap unke saman ho sakte.
So you can do what he has done.
To jo kuch unhone kiya hai, yahi baat aap bhi kar sakte.
And if you really have that confidence, we can bring the Buddha back to Buddhagaya.
Aur agar ye vishwas aapka hoga, to hum Buddha ko Buddhagaya mein wapas la sakte.
And with our Bihari friends. With our Bihari friends, we can turn Bihar back into Magadha, the central country of Buddhism.
Bihari